उस व्यक्ति के लिए जिसकी दृष्टि सदैव भोग में है, जो इस जगत में बना रहना चाहता है, उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे एवं अंततः अपने इंद्रियों को तुष्ट करे। उससे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता रहता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्गलोक को जा सकता है, किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है। गृहस्थ व्यक्ति वो है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ तो रहता है, परंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वे साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावना मृत के पद तक पहुंचना होता है। वास्तविक यदि हम अंग्रेजी में उस नाम को याद करते हैं, हमारे सामने हमारा लक्ष्य स्थिर हो जाता है। इंटरनेशनल इस्कोन का जो हम लंबा वो पूरा नाम देंगे, उसका क्या टोटल क्या होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कंसियसनेस। फॉर माने के लिए, फॉर हमारा समाज किसके लिए है? कृष्ण चेतना के लिए है, बस। और बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना बढ़िया नाम दिया प्रभुपाद जी ने, इंटरनेशनल सोसाइटी। सोसाइटी माने समाज, समाज माने व्यक्ति समूह, प्रत्येक व्यक्ति समाज है। तो समाज का लक्ष्य व्यक्ति के लक्ष्य के अनुसार निर्धारित होता है। जिस समाज में, जैसे मान लीजिए आगरा है, आगरा में आप एक कॉलोनी में जाओगे, उसको डॉक्टर्स कॉलोनी कहते हैं। वहां पे जितने लोग हैं सब डॉक्टर हैं, है कि नहीं? जाकर देख सकते हैं। तो वहां डॉक्टरों का समाज कहने का अर्थ यही है, वहां पे जितने भी व्यक्ति है उस सबका लक्ष्य है डॉक्टरी करना, और उनको डॉक्टरों का समाज कहा गया। कुछ कुछ जगह में व्यापारियों का है कि नहीं पंकज जी? कुछ ऐसा होता है, व्यापारियों का समाज, ये अग्रवालों का समाज, और महाजनों का समाज, गुप्ताओं का समाज। जिस समाज जिसके लिए है उसको वैसा समाज कहते हैं। तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी किसके लिए है, इसका अर्थ होता है यहां का प्रत्येक सदस्य उसका लक्ष्य है हमको कृष्ण से मिलना है। कृष्ण चेतना को प्राप्त करना ये प्रत्येक सदस्य का लक्ष्य होना चाहिए। इसी को यहां इस तात्पर्य में लिखा हुआ है। किंतु यहां कपिल देव गृहमेधि के विषय में बता रहे हैं, जिनका लक्ष्य भौतिकवादी संपन्न जीवन बिताना है और जिसे वे यज्ञ दान तथा सत्कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्म की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, ये चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते रहते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। कई लोगों के पास करोड़ों करोड़ों के संख्या में, करोड़ों रुपए की, करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है, फिर भी वो भागदौड़ करते हैं। अरबों की संपत्ति है, यदि पूछा जाए वो खाएंगे, वो निर्वाह तो उनका अपना हो ही जाएगा, उनके पुत्र भी खाएंगे, उनके पौत्र भी खाएंगे, उनके प्रपौत्र भी भोग करेंगे, तब भी संपत्ति समाप्त होने वाले नहीं है, फिर भी वो संपत्ति के पीछे भागते हैं। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं, इतना होते हुए भी, समृद्ध होते हुए भी, पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते रहते हैं। भौतिक यातना माने क्या? धर्म अर्थ के लिए तरह तरह के कष्ट स्वीकार करते हैं, तरह तरह के कष्ट स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये जो अध्याय भक्तजन चल ही रहा है, हम शुरू से निवेदन करते आ रहे हैं, जब जब हमें अवसर मिलता है इस प्रसंग पर चर्चा करने का, हम बार बार कहते हैं ये प्रसंग चल रहा है माता के पूछने पर, श्रोता जो चाहती है वक्ता वो देता है। अनचाही वस्तु को यदि वक्ता देगा, श्रोता उसका ग्रहण नहीं कर पाती। माता परम उपराम हो चुकी थी, पति जो थे वो भी चले गए थे, और नौ कन्याएं थी, उन सबका विवाह हो चुका था। अब मां चाहती थी कि मुझे संसार से वैराग्य हो जाए, तो माता ने निवेदन किया था, हे पुत्र मुझसे ऐसी बातें करो जिससे संसार से मेरा मन उपरत हो जाए, मैं वैराग्य हो जाऊं, मैं वैरागन हो जाऊं। तो संसार की जो दुख, जो विपत्तियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मां के समक्ष पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव रख ही रहे हैं। हमने ये भी निवेदन किया था, कल भी किया था, यदि हम किसी को निवृत्त करना चाहते हैं, उस वस्तु का अवगुण हम बखान करते हैं, हम कहते ये चीज बहुत बुरी है, इसको ग्रहण नहीं करना, तब वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करता। तो माता के समक्ष पूरी पूरी बात बताते हैं भगवान कपिल, जन्म की यातनाएं, मृत्यु की यातनाएं, और मां के गर्भ में रहते हुए जो संतान उसकी यातनाएं, जन्म लेने के पश्चात जो यातनाएं हैं, ये सारा वर्णन आप लोगों ने सुना है। इस अध्याय में प्रमुख रूप से जो 32वां अध्याय का प्रारंभ होता है, और एक अध्याय में संपन्न हो जाएगा, ये कपिल का उपाख्यान, कापिले उपाख्यान 9 अध्याय वाला ये 33वें अध्याय में समाप्त हो जाएगा। 32वें अध्याय में कपिल भगवान ने प्रमुखतः दो बातों की चर्चा करी है, निष्काम कर्म की चर्चा और सकाम कर्म की चर्चा। प्रभुपाद जी जब इस अध्याय का नामकरण करते हैं, इस अध्याय का नामकरण में कहते हैं कर्म बंधन, अंग्रेजी में लिखते हैं द एंटंगलमेंट ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म का क्या बंधन होता है। कर्म बंधन माने पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मौत को स्वीकार करना, उससे कहते हैं कर्म बंधन। कर्म बस विश्व राचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम करेंगे सो तो हमें मिलेगा। तो यहां कपिल भगवान का कहना है, हमको हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमें बार बार जन्म मृत्यु की यातना देता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानती परंतप। हे परंतप, हे शत्रु दमन करने वाले, इस संसार में व्यक्ति इच्छा द्वेष के जाल में फंसकर बार बार सर्ग में जाता है। सर्ग माने सृष्टि, सर्गे जानती परंतप। परंतप शब्द का अर्थ होता है, हे पार्थ तुम मृत्यु रूपी शत्रु को मार डाल, यानी कि ऐसे कर्म कर जो तुम्हें मृत्यु और प्राप्त नहीं होगी। और इसी को समझाते हुए कपिल भगवान कहते हैं, जो भौतिक समाज में हम लोग हैं, बारंबार इन कर्मों को करके बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। कौन सा कर्म है? धर्म, अर्थ और काम। एक प्रमुख बात प्रभुपाद जी हमारा दृष्टि आकर्षण करते हैं, हर किसी को धन तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वो धर्म नहीं करेगा। इसलिए अग्रवाल लोग बड़े चतुर होते हैं। पूरे विश्व में आज देखो, संसार में यदि प्रतिष्ठित पद पर कोई है धन के रूप में, वो है अग्रवाल समाज। आप यदि टॉप 20 की गिनती करोगे, उसमें कहीं ना कहीं 10-15 लोग तो अग्रवाल गोष्ठी गाएंगे। किसी को ज्ञान है इसके बारे में, देख लेना इंटरनेट जाकर के, टॉप 20 संपन्न व्यक्तियों में कहीं ना कहीं अग्रवाल व्यक्ति ही आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे ही। वो बंसल हो, चाहे कंसल हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे महाजेंद्र, कुछ भी हो, आएंगे ही। क्यों? इनमें कई लोगों से हम मिले हैं, इनमें एक गुण है। बढ़िया गुण क्या है? ये धन को खोना नहीं चाहते हैं। धन हमारे हाथ से चला जाएगा ये समझ करके वो दान करते हैं कि दान एक ऐसी प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक नियम है। संत कबीर ने कहा, दान देने से धन ना घटे, नदी ना घटे नीरे। सोच समझ कर देख लो, क्यों कहता है कबीर। एक ऐसा प्राकृतिक नियम है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। आप दे करके देखो, आपको मिल जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है। तो अग्रवाल लोग ऐसे कर्मों को करते हैं ताकि धन हमारा आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए कम से कम अपने व्यापार से, अपनी कमाई से 10%, 20% वो छंट करके रख देते हैं कि हमको इस महीने में, एक साल में इतना ही दान करना है ही है। ये सत्य बात हम कह रहे हैं। यहां पे कई अग्रवाल बैठे होंगे, आप उनसे पूछ लो, है कि नहीं पंकज जी? हाँ बिल्कुल, माथा हिला दे। आप कितना संचय करते हैं एक साल में देने के लिए? वो उनका अनलिमिटेड चलता है। तो कुछ कुछ लोग हैं हम जानते हैं, वो मंगतराम अग्रवाल जी हैं, उनसे हमने भी बात करी है। वो कहते हैं, हम कुछ, प्रभु जी हमारे पास डब्बा होता है, हम उसमें इतना प्रतिशत रख ही देते हैं कि हर साल में हमको इतना दान करना है। किस लिए? आगे चल के हमको गरीबी का मुख देखना ना पड़े, निश्चित बात है। दान देने वालों को कभी कमी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। रंती देव ने अपनी थाली दे दी और संसार का ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो गया कहीं भी। और प्रसंग तो आप शाम को सुनोगे, सुदामा जी भी खाली हाथ नहीं गए। उसमें मोरालिटी है, उसमें नैतिक शिक्षा है। यदि हम कुछ चाहते हैं, उससे पहले हमको कुछ देना पड़ेगा। इसलिए भक्त सुदामा जी ने कहा है, प्रिय कल्याणी, यदि कुछ है तो मुझे कुछ दे दो, मैं मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं। ये भारतीय परंपरा है, खाली हाथ में जाना अच्छा नहीं है। कुछ लेकर, कुछ दातापन में जाओ, ये भाव है। सायंकालीन चर्चा में आप लोग सुनोगे, वास्तव में महिमा सुदामा जी की बहुत अधिक है। तो ये लोग दान करते हैं, बहुत अच्छा गुण है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, इसमें जन्म मृत्यु का चक्कर कटने वाला नहीं है। क्यों? आपने धर्म किया। धर्म का फल क्या है? अर्थ। वैसे परम धर्म का अर्थ, भागवत धर्म का फल अर्थ नहीं है। भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति। परंतु जो सामान्य धर्म है उसका फल है अर्थ। और अर्थ हमको किस लिए चाहिए? हमारे तरह तरह के प्रयोजन हैं। हमको पत्नी चाहिए, हमको गृह चाहिए, हमको अपत्य चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, नाम जस आदि चाहिए। हा? प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा गौरवम घोर रौरवम शास्त्र में कहा गया। ये जो गौरव है, ये रौरव है, शास्त्रकारों ने कहा है। प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा गौरवम घोर रौरवम अभिमानम सुराप्यापानम। अभिमान क्या है? सुरापान है, मदिरापान है। तान त्यक्त्वा सुखिम भवेत, बोले तीनों का जो त्याग कर देता है वो सुखी होता है। गौरव का और अभिमान का और क्या है? प्रतिष्ठा का। स्थान त्यक्त्वा, सुखी भवेत। जिसके पास है वो सुखी कैसे बनेगा? तो तात्पर्य के प्रारंभ में प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं, जैसे हमने दृष्टि उदाहरण दिया चातक और गिद्ध है। एक तो धर्म कमाता है, धर्म अर्थ और उसके उसका उड़ान बस है, काम तक है, हमको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वास्तव में संस्कृत में व्युत्पत्ति यदि होगी गृहम एधि, एधि शब्द का अर्थ होता है बढ़ाना, एधि एधि, इसलिए ईंधन को संस्कृत में कहते हैं एधांसी। गीता में देखो चौथे अध्याय में यथा समिधो एधांसी, एधांसी माने बढ़ाना, प्रज्वलित करना। तो गृहस्थ कोई गृह व्यक्ति है जो अपनी कामनाओं को बढ़ाता चलता है, उनको कहते हैं गृह मेधि, माने हमको गृह बढ़ाना है। कैसे गृह बढ़ाओगे? पत्नी चाहिए, बढ़ गया, पुत्र हैं, बढ़ गए, घर चाहिए, बढ़ गया, अर्थ चाहिए, बढ़ गया, पलंग चाहिए, सब बढ़ता है कि नहीं? गृहम एधि, कपड़े चाहिए, एक चादर है, और पत्नी हो तो 10 चादर चाहिए, 10 एक 11 हो गया, बच्चे हो तो फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। गृहम एधि, बढ़ाते चला बढ़ाते चला बढ़ाते चला। यदि हम इस तरह से बढ़ाते चलेंगे तो मेरे प्रभु जन्म मृत्यु का चक्कर कटने वाला नहीं है। यहां पर एक चीज में तो हमें बड़ी प्रसन्नता भी हुई और हंसी भी आई। यहां पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये कैसे कैसे इसका संभव है, आप लोग थोड़ा विचार करके देखिएगा। गृहस्थ व्यक्ति वो है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबों के साथ तो रहता है किंतु कोई लगाव नहीं रखता। लगाव माने आसक्ति, लगाव माने आसक्ति। आसक्ति को यदि हम व्यंग रूप में व्याख्या करेंगे, आसक्ति माने आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। ये संस्कृत की व्याख्या नहीं है, ये व्यंगात्मक व्याख्या है। आ तो सकती है, आ तो जाएगा पर जाएगा नहीं, उसी को कहते हैं आसक्ति। पर ऐसा कैसा गृहस्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है। पर क्या हम सब करेंगे, हम कहेंगे हम आसक्त नहीं है? हम शादी भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। 30,000 10 ग्राम सोना, पत्नी को आधा किलो सोना भी देंगे, हम कहेंगे हमको आसक्ति भी नहीं है। अच्छा बढ़िया फ्लैट बनाएंगे कम से कम 50 लाख का, कहेंगे हमारी आसक्ति नहीं है। घर में इतने पलंग डालेंगे जो कम से कम 20-25-50 हजार का हो, कहेंगे आसक्ति नहीं है। बाथरूम में जैकूजी टॉब रखेंगे, हम कहेंगे हमारी आसक्ति नहीं है। हम कपड़े पहनेंगे 500 रुपए मीटर वाले, कहेंगे आसक्ति नहीं है। ये केवल सफेद धोखा है, सफेद धोखा। सफेद धोखा समझते हो? व्हाइट चिटिंग। आसक्ति नहीं रखने वाले गृहस्थ, एक कथा कहें हम, महाराष्ट्रीय कथा है। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, जंगल से काष्ठ संग्रह करके गुजारा करते थे। और एक दिन एक भक्त नामदेव ने विट्ठल से कहा, प्रभु आपका ये भक्त राका जो है बहुत अच्छे भक्त है, पर आप उनको इतने गरीबी क्यों दी है? दो समय की रोटी भी उनके पास नहीं है, आपने क्यों दी इतनी गरीबी? प्रभु ने कहा मैं तो उसको धन देना चाहता हूं पर वो इतना अनासक्त है, इतना अनासक्त है, वो एक समय के रोटी के अलावा दूसरे समय की रोटी वो नहीं चाहता। वो संचयी नहीं है, वो परिग्रही नहीं है, वो तो अपरिग्रही है ना। आप ऐसे कहते हो, आप में बहुत चतुराई है, आप कहने में बहुत चतुर होते हो। श्री कृष्ण के जो 64 गुण है उनमें से एक गुण है वाक्पटुता। श्री कृष्ण ऐसे पटु है, ऐसे मोहित कर देंगे ताकि परम बुद्धिमान भी हो वो उसकी बुद्धि चकरा जाएगी। ऐसा ऐसा दृष्टांत है भी, एक एक मिनट में चकरा देंगे। शकुनी पुत्र को देखो क्या कर दिया, अरे वरदान तो दे दिया, क्या उसको पता नहीं शिव जी का वरदान अमोघ है? शिव जी ने वरदान दे दिया कि जिसके माथे पे हाथ रखोगे उसका माथा फूट जाएगा। अच्छी बात है, भागा वो भगवान के पीछे, बोला बहुत अच्छी चांस है, बहुत अच्छा चांस ये है, इनके पास जो अच्छी सुंदरी स्त्री है इनके लायक ये नहीं है, ये बिल्कुल नालायक पति है। उमा जैसी पति, पार्वती जैसी स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री संसार में कहां है, और ये नंगधड़ंग रहता है, कभी बाघछाल पहनता है, कभी पहनता नहीं है, है नहीं, और भस्म लेपन करके रहता है कहीं पहाड़ की गुफा में, और अपनी जगह ही नहीं है, कुबेर जी से भाड़े में जगह लिया है, जानते हो कि नहीं, ये कुबेर की जगह भाड़े में लेकर के भजन करते हैं पेड़ के नीचे, ये इनके पास इतनी सुंदर स्त्री, अच्छा होगा वरदान दिया, जो ईश्वर करता है भला करता है, इसी के माथे पे हाथ रखूंगा, इसको मार दूंगा, इसकी पत्नी को ले जाऊंगा, कितनी दुष्टता थी। अब जब भगवान शिव के पीछे शकुनी पुत्र भागा तो भगवान शंकर चले गए भोलेनाथ है, चलते गए चलते रहे, प्रभु ने कहा बाबा कहां जा रहे हो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो, ना देखो मेरे पीछे वो राक्षस भाग रहा है और मैंने वरदान दे दिया, कोई बात चिंता मत करो, आप पीछे जाओ मैं आ गया था हूं। ब्राह्मण बटु वेश धारण करके प्रभु सामने आ गए, कहां जा रहे हो महाराज, आप लोग इतने बुद्धिमान होकर के इतनी सी बुद्धि नहीं रखते हो, जो गांजा फूंकता है उसी की बात पर विश्वास करते हो, अरे भांग खाते खाते ये भोला हो गया, उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई है, इनके तुम जैसे बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति इनकी बातों पर आ गए, ये अच्छी बात नहीं है। बस वरदान दिया था, बिल्कुल समझ गए थे सही सही बात है, लेकिन जैसे ही भगवान श्री विष्णु के मुख से वाणी निकली उसकी बुद्धि खराब हो गई। बोले नहीं आप विश्वास क्यों करते हो, आप अपने माथे पर हाथ रख लो ना, देख लेना, अरे उसके दूसरे माथे को तो तुम्हारा हाथ जाएगा नहीं, अपने माथे पर तो हाथ जाएगा ना, हाँ जाएगा ना, रखो हाथ, रख दिया हाथ, जैसे हाथ रखा बस माथा उसका फट गया, ऐसी बुद्धि है। तो नामदेव जी ने कहा आप बहुत चतुर होते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको धन दो, ठीक है आज देता हूं। तो एक मोहर की थैली बना करके जब राका जिस रास्ते होकर के जंगल जाते थे उसमें उसने डाल दिया, मां प्रभु ने डाल दिया, तो राका चले गए, चलते गए चलते ले गए, मोहर देख रहे हैं, मोहर को देख करके चले गए, प्रभु मैंने आज कौन सा अपराध किया था जिसका दंड आज मुझे मिला, मैं तो जंगल नित्य प्रति जाता हूं, बस काष्ठ संग्रह मेरी वृत्ति है, आज 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 प्रभु मुझे तुम क्यों ललचा रहे हो, मेरा क्या अपराध है। पर पीछे पत्नी जा रही थी, पत्नी जा रही थी, उन्होंने सोचा स्त्रियों में सुवर्ण के प्रति आकर्षण होता है, कहीं ये देख करके ना कह दें इसको उठा लेते हैं, उन्होंने अपने बाएं पैरों की उंगली से उस पर धूल झोंक दिया, उसको ढक दिया, ढक करके चल दिए, वही प्रभु नाम लेकर के चल दिए। पत्नी जा रही थी, वो भी परम पतिव्रता और सुशीला थी, वो आगे चल करके पूछा एक बात पूछूं, हां पूछो, अच्छा आपने धूल किस पर फेंका, नहीं ऐसे मैंने फेंक दिया, क्यों पूछती हो, ना मैं पूछती हूं आपने धूल धूल पर क्यों झोंका, ये तो मिट्टी है ही है, आपने आप तो इतने बड़े बुद्धिमान हो, आपने मिट्टी पर मिट्टी क्यों फेंक दी। तब राका को पता चला अरे मेरा वैराग्य तो ऐसा ही है पर इनका वैराग्य मेरे से ज्यादा है, इसलिए संत लोगों ने कहा तू तो राका है पर तेरी पत्नी बांका है, इनका वैराग्य तुझसे भी ज्यादा है, तुम्हारे में तो भेद है, ये सुवर्ण है ये मिट्टी है, पर तेरी पत्नी में ये भेद नहीं है कि ये मिट्टी है और ये सुवर्ण है, वो कहती है ये भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, तुमने मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाली, ये है अनासक्ति, लकड़ी बेच करके। परंतु हम बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं, हम कहेंगे अनासक्त, भाई जिसकी आसक्ति नहीं है वो करेगा कैसे, कैसे करेगा, उनका प्रयास तो नहीं होगा। इस भौतिक संसार में हमको जो प्रेरक जो प्रेरण जो जो हमें प्रेरणा देती है वो है जो देता है वो है काम, पहले हम लक्ष्य निश्चित करते हैं फिर हम काम करते हैं। ट्यूशन करने वाले ट्यूशन मास्टरों से पूछो ये पुरुषोत्तम जी ट्यूशन करते हैं आप, हाँ जी, ये पहले तय करते हैं, तुम 1000 रुपया दोगे के बच्चे के लिए महीना, तब हम पढ़ाएंगे। पहले पहले मूल्यांकन होता है, नौकरी में वही है। हम पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, तुम कितना तनख्वाह दोगे, ठीक है हम तुमको 20,000 रुपया महीना देंगे, तब हम ज्वाइन करेंगे। किसी फैक्ट्री में चले जाओ, पैकेज है, पैकेज समझते हो? हाँ जी, 2-3 साल के लिए पैकेज है 10 लाख का, जाओ। पहले अर्थ की तैयारी, अर्थ निश्चित है, फिर बाद में हम काम देंगे। डॉक्टर के पास चले जाओ, प्रेस्क्रिप्शन कितना प्रभु, 150 रुपया पहले जमा करो, बाद में हम रोगी देखेंगे। यह सेवा है, निष्काम है ये, इसको कहते हैं व्हाइट चिटिंग, सफेद धोखा यह है। निष्कामता तो कुछ और है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये गृहमेधि जो है, ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे, स्वर्ग लोक तक जाएंगे। त्रैविद्या माम सोमपाहा पोत पापा यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान एवं त्रैधर्म मनोप्रपन्न गतागतम काम कामा लभन्ते। बोले त्रैधर्मम, त्रैधर्मम वेद धर्मम, धर्म अर्थ और काम, एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना, एवं माने इस प्रकार से, त्रैधर्म माने वैदिक अनुष्ठान, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक नहीं है। गतागतम, गत माने जाना, आगतम माने आना। काम कामा लभन्ते, काम कामा माने जिनके अंदर केवल काम ही काम है, काम कामा, ये भक्ति कामा नहीं है, काम कामा लभन्ते। त्रैविद्या माम सोमपाहा पुत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्गतिम, हम स्वर्ग जाएंगे। जाकर क्या करोगे, भोग भी करोगे। तीतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वहां का भोग थोड़ा नहीं है, विशाल भोग है। क्या आप कल्पना कर सकते हो उर्वशी कितनी सुंदरी होगी, कोई नहीं कर सकता, किसने देखा है क्या, कैसे कर सकते हो। मर्त्य लोग में यही हम देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा यही के थोड़े लोगों को हम देखते हैं। नंदनवन कैसे होगा, अलकापुरी कैसी होगी, किसने देखा। विभावरी कैसे, वो शहर कैसा होगा, निम्लोचनी कैसा होगा, शंजमणि भी कैसे होगी, कोई नहीं, किसने नहीं देखा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम, जाना आना, जाओ आओ, जाओ आओ। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा माम वजे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। पर वो स्थिति किसको प्राप्त होगा, अनासक्त विषयों को, जो गृहस्थ हैं, घर को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है जितना आया उससे संतुष्ट हो गए। आठ भी भगति जथा लाभ संतोषा सपने हो ना देखी है पर दोषा, एक भक्ति का अंग है, जितना मिला उसे संतुष्ट कर लिया, यह अनासक्त गृहस्थ है, ऐसा चाहिए। श्री कृष्ण के समय सुदामा जी एक अनासक्त गृहस्थ थे। कैसे अनासक्त आप लोग शाम को श्रवण करोगे, पर ऐसे सुदामा की तरह महाप्रभु के पास भी एक अनासक्त गृहस्थ थे। उनको ऐसे गृहस्थ धर्म में रखा गया था शिक्षा देने के लिए। अनासक्ति किससे कहते हैं, उनका नाम था सुदाम और इनका नाम था श्रीधर। श्री धारयति इति श्रीधरा, श्री माने भक्ति, श्री माने विद्या, श्री माने विद्या, जो श्री को धारण करे, जो विद्या को धारण करे, वही श्रीधर। गरीबी होना कोई कोई बड़ी बात नहीं है। कल प्रबोधानंद महाराज, प्रभु परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज जी की कक्षा थी, एक बार माखन चोर प्रभु ने हमसे कहा था, 8-10 दिन पहले, बोले प्रबोधानंद महाराज एक बार हमसे बात किए। बोले क्या बात किए, बोले रमाकांत तो बुद्धिमान है, विद्वान है, पर नटवर बहुत चालाक है। बोले उसने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके पास धन की कमी नहीं है, है? पर इसके पास कुछ नहीं है। मैंने कहा विद्या का लक्ष्य धन नहीं है, विद्या का लक्ष्य है विद्यापति। श्रीधर बहुत गरीब थे लेकिन परम विद्वान थे। अनासक्ति को सिखाने के लिए महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, जाओ तुम ये गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, लोक संग्रह करो। श्री कृष्ण कहेंगे इस सुदामा प्रसंग में कि जैसे मैं लोक संग्रह के लिए आता हूं, मेरे भक्तों को भी मैं लोक संग्रह के लिए भेजता हूं। यदि मेरे आचरण को कभी कभी लोग मानेंगे नहीं, बोले वो तो भगवान है, उनके लिए तो सब संभव है, पर सामान्य कोई व्यक्ति करता है कहीं, हाँ बस देखो कैसा अनासक्ति, कैसे अनासक्ति है। श्रीधर के घर पर महाप्रभु जाते थे। एक बार श्रीधर से महाप्रभु ने पूछा, अच्छा श्रीधर बताओ तुम रोज लक्ष्मीपति का भजन करते हो, पर तुम इतने गरीब क्यों, तुम पर प्रभु की कृपा क्यों नहीं है? और देखो जो लोग चंडी पूजा करते हैं, उनके घर में असीम अमाप संपत्तियां हैं। महाप्रभु ने कहा लक्ष्मी कांते सेवन करिया केने तुमी अन्न वस्त्र दुख पाओ कह देखी सुनी। रोज रोज तुम लक्ष्मीपति की आराधना करते हो फिर भी तुम्हारे पास अन्न वस्त्र नहीं है, क्यों नहीं है आप बताओ? पर अनासक्त गृहस्थ श्रीधर की उक्ति तो सुनिएगा। वो श्रीधर स्वामी श्रीधर जी कहते हैं, श्रीधर बोले ने उपवास तना करी, छोटा हो का बड़ा हो का वस्त्र देख परी। श्रीधर ने कहा भगवान कहीं मैं उपवास तो नहीं करता हूं, जो भी थोड़ा मोड़ा मिलता है मैं प्रसाद के रूप में पा लेता हूं। छोटा हो का बड़ा हो का वस्त्र देख परी, छोटा हो अथवा बड़ा हो वस्त्र तो मैंने पहना है, आप कहते हो नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, खाने को थोड़ा बहुत कुछ साग रोटी है और पहने को तो थोड़ा बहुत चीथड़ तो है ही ना। महाप्रभु ने पुनः श्रीधर बोले उपवास नहीं करी, प्रभु बोले देखिलाम गांठ दस ठाई, घरे बोलो देखी तेछी गड़ का छी ना। बोले श्रीधर तुम जो कहते हो कि तुम वस्त्र पहनते हो उसमें तो 10 गांठ है, कैसा वस्त्र तुम पहनते हो, और घर में एक कटोरा तो तुम्हारा है नहीं, मिट्टी का एक फटा मटका पड़ा हुआ था। और श्रीधर का उसकी वृत्ति क्या थी? वृत्ति थी केले पेड़ को खरीद करना, सबसे सस्ती वृत्ति ये थी। आप लोग जानते हो बंगाल में ओडिशा में उस जहां सागर का किनारा वहां बहुत केले के वृक्ष होते हैं, और लोग ऐसे ही केले के पेड़ को काट देते हैं, यदि फलता है तो अच्छी बात है, पर जो केला नहीं फलता, तुलसीदास गोस्वामी ने लिखा है यदि कोई केले का पेड़ होता है और उसको बिना काटे उसमें केले नहीं फलता, कभी कभी केले के पेड़ों को काटना पड़ता है, तो लोग काट के फेंक देते हैं। तो कभी कभी ये श्रीधर जी जाते थे और वो केले के पेड़ों को, उनका ये नित्य वृत्ति थी, प्रतिदिन जाते थे और केले के पेड़ को संग्रह करते थे। और बहुत उपकारी चीज है, केले के पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसमें वो डोने बनाते थे, द्रोण बनाते थे, और उसका पटका होता था कहीं धागे के रूप में, उसको फूल को फूल माला बनाने में आता है। आजकल हमारी यहां माताएं फूल माला धागे से बनाते हैं, धागे में केमिकल लगता है, धागा शुद्ध नहीं होता है। जगन्नाथ मंदिर में जो माला चढ़ती है ना वो धागे से नहीं बनती है, वो केले का जो पटका होता है उसको ऐसे बीन करके पतला बना करके उसी से बनाते हैं। और नारियल की सुई है, नारियल की जो छड़ी होती है ना, नारियल के पत्ते पत्ते को उसको बीन करके जो जिसमें झाड़ू बनता है उसकी उसकी सुई बनती है, और उसमें वो पटका डाल के सब कुछ प्राकृतिक है। आज भी जगन्नाथ की जो माला है वो 14 हाथ लंबा है, तुलसी की माला और माला वो सब केले के पटके से बनती है वो मालाएं। तो श्रीधर जी की यह नित्य प्रति की वृत्ति थी केले के वृक्षों को संग्रह करना और उससे वो सामान केले के जो पत्ते से द्रोण बनाना, पटके से धागा इत्यादि जो भी है, और उसके बीच में एक सफेद से डंडी सी मिलती है जो बंगाल के लोग उसको उसकी भाजी बना करके खाते हैं, और केले का एक फूल होता है वो भी बढ़िया सब्जी बनता है। तो श्रीधर जी की वृत्ति थी, सस्ती वृत्ति थी। तो महाप्रभु प्रत्येक दिन बोलते थे, देख यही चंडी विषय हरीर पूजिया केने ना घरे खाए परे सब नगरिया। ये नगरवासियों को तो देखो, चंडी पूजा करते हैं, क्या नहीं खाते, क्या नहीं पहनते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है श्रीधर। श्रीधर ने कहा, जो मुझे प्रभु ने दिया है हम उसी से संतुष्ट है। महाप्रभु ने कहा, तू झूठ बोलता है, लोगों को तू ठगता है, तेरे पास में पोता धन है। पोता धन समझते हैं, बोले मिट्टी के नीचे तुमने कुछ गाढ़ करके रखा है, तुम ये सो कहते हो बहुत धन है और हमको सारा ये दे दो ना। ठीक है, इसका जो भी पैसा है तुम चुकाओ ना, हम ब्राह्मण है, हम कहां से पैसा पाएंगे। और तुम गंगा पूजा करते हो, गंगा पूजा करके सामग्री खरीद कर गंगा में फेंक देते हो, और गंगा में जैसे फेंकते हो मुझे भी दे दो, मैं गंगा का बाप हूं। श्रीधर ने सोचा, ये ब्राह्मण बड़ा उदंड है, इनके साथ तर्क वितर्क करना अच्छा नहीं है, चलो यहां पे तर्क मत करो, घर पे चलना, तर्क करेंगे। श्रीधर ऐसा समझा बुझा करके उनको जो भी महाप्रभु चाहते थे, फूल हो पत्ती हो, जो भी महाप्रभु की अभिलाषा, वो उनको दे देते थे। पर वही श्रीधर, वो तो बहुत विस्तार रूप से दिया गया, आप लोग चैतन्य भागवत आज जरूर पढ़ लेना। निष्कामता क्या है, चैतन्य भागवत के आदि लीला के द्वादशवें अध्याय में श्रीधर की कथा थोड़ी सी है, और मध्य लीला के नवम अध्याय में है। मेरा निवेदन है आज इस प्रसंग को अवश्य पढ़ना, मैं तो संकेत मात्र कर रहा हूं, समय स्वल्प है, बस 9 बज गए, 5 मिनट के अंदर हम इसको संपन्न करेंगे। आप ये श्रीधर के प्रसंग को अवश्य पढ़ लेना, कैसे निष्कामी गृहस्थ वो थे। बच्चे तो होंगे, पत्नी तो होगी, पर महाप्रभु का कितना प्रेम था श्रीधर पर, और कैसे गृहस्थी थी देखिएगा। सही श्रीधर रे किछु सुना आख्यान, खोलार पसार करी राखे निज प्राण। केले वृक्ष को बेच बेच करके अपना प्राण रखते थे। खानी खानी करी तहा काटिया बेचे, तहा ते जे किछु है दिवस उपाय। पीस पीस करके, खंड खंड करके काटते थे, उसको बेचते थे। और क्या करते थे, ताहते जे किछु है दिवस उपाय। दिन में बाजार में जो भी कुछ कमाई होती थी, उस कमाई से क्या करते थे, तार अर्धे गंगाए नैवेद्य लागी जाए, आधा पैसा आधा अर्थ गंगा जी की पूजा में लगाते थे। ऐसे प्रभु को, ऐसे भक्त को प्रभु नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे। कितनी गरीबी है, और जो भी कुछ कमाता था उससे आधा पैसा वो सेवा में लगाता था, तब तो प्रभु की प्रीति हुई। इसी को कहते अनासक्ति। क्या ऐसा खर्च करने वाला अपनी पत्नी को के नई साड़ी, बनारसी साड़ी दे सकता है, कभी नहीं दे सकता। खाने के लिए रोटी नहीं तो कहां पहनावा दे सकता है। और क्या करते थे वो, यही मत है विष्णु भक्तिर परीक्षा, अर्धेक सत्वदाय है निज प्राण रक्षा। बोले यही भक्त की परीक्षा है, वो अर्ध सत्व गंगा जी में देते थे, और यही भक्त की परीक्षा करने के लिए महाप्रभु ने भेजा था, जाओ तुम निष्कामी गृहस्थ होकर के संसार में एक उदाहरण प्रस्तुत करो। गरीबी तो है ही है, और क्या करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। अरे हम तो संस्था बना रखे हैं, तुलसी माला लोई बाजार में 20 रुपया के हम 50 रुपया बेचते हैं, हम इसको कभी पसंद नहीं करते, साक्षी है, गोपेंद्र पर पूछ लो, ये भी संकीर्तन करते थे, हम भी संकीर्तन करते थे। हमने अपने 4-5 साल संकीर्तन काल में कभी ऐसा नहीं किया। हम सबसे ज्यादा कीमती चीज लेके जाते थे, हम कभी ये 10-10-5 रुपए के सामान नहीं लेते थे। और श्रीधर जी के लिए क्या कहा महाप्रभु ने, महासत्यवादी ते हूं जेन युधिष्ठिर, इतना सत्य कहते थे तो तुलना देते थे, ये ना युधिष्ठिर जारे जेई मूल्य बोले नाहय बाहिर, एक रेट सब जानते हैं। श्रीधर जो रेट बोलता है बिल्कुल उचित दाम बोलता है, उससे 1/54 भी कोई नहीं कम करता था। देखो श्रीधर भी व्यापारी थे ना, व्यापार करना उनकी वृत्ति थी। और महासत्यवादी, सत्य से ही व्यापार टिकता है। शास्त्र कहते हैं नामी बनिया और बदनामी चोर, यदि बनिया सत्यवादी हो तो लोग अंधाधुंध उसकी दुकान पे जाते हैं, अच्छा अच्छा आदमी है वहीं से खरीद करेंगे। और चोर एक बार बदनाम हो जाए ना, फिर पुलिस वाले उसी के घर पर बार बार धावा बोलते हैं, कहीं चोरी हो गई तो FIR उसी के नाम पर लिखा दो हा? और क्या करते थे सिद्धर, मध्य मध्य जेवा ज्ञान तार तत्व जाने ताहर बचने मात्र द्रव्य खाने की ने। और सभी लोगों का विश्वास श्रीधर पर था, और पूरे नवद्वीप में उसका नाम था खोला बेचा श्रीधर। खोला माने द्रोण बेचने वाला श्रीधर था वो, ऐसा गृहस्थ था वो। और क्या करते थे वो रात दिन, देखो सुनो क्या क्या उनका कर्तव्य था। चारि प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे, सर्वरात्रि हरि बोले दीघल आह्वाने। दिन 4 प्रहर और रात 4 प्रहर। रात को श्रीधर को नींद नहीं होती थी। वृंदावन दास के ये लेख कभी गलत नहीं हो सकता। वो कहते हैं 4 प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे, ऐसे नाम के मतवाले ऐसे प्रेमी भक्त उनको नींद नहीं होती थी। हम लोग को तो इतनी नींद होती है 4 बजे तक नींद नहीं खुलती, कैसे चिंता हो कहां को नींद आएगी। सुखिया सारा संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा है जागे और रोबे। वो भी एक गृहस्थ थे, झूला थे, कपड़ा बुनना था उनका काम, और इनका था खोला बेचना द्रोण बेचना। 4 प्रहर रात को नींद नहीं आती थी। सर्वरात्रि हरि बोले दिघल आह्वान, और जोर जोर से बोलते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चंडी पूजक जितने सब थे ना, वो उनका परिहास करते थे, कहे महा चसा बेटा भाते पेट नहीं भरे। बोले ये चसा, चसा माने चासी, ये किसान है, अरे ये तो इतना गरीब किसान है, इसके पास भोजन के लिए रोटी नहीं है, भात नहीं है, पेट नहीं भरता है, इसलिए रात भर चिल्लाता रहता है। महा चसा बेटा भाते पेट नहीं भरे, क्षुधाय व्याकुल हया रात्रि जागी मरे। क्षुधा से आतुर होकर के मरता ये चिल्लाता है, ये चंडी पूजक का ये मंतव्य था। पर महाप्रभु ने कहा उनको बुलाओ, उस श्रीधर को बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। तो लोग जाते हैं श्रीधर को बुलाने के लिए, बुलाने क्या जाएंगे, आधे रास्ते से उनको आवाज सुनाई दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुना लोग ने, श्रीधर चिल्ला रहा है, बस उनके पीछे भाग, उनके समीप भागे, इधर इधर ही श्रीधर जी का घर होगा, आवाज सुनते ही भागे। ऐसा ही भक्त का घर होता है, ये कोई आधुनिक बात नहीं है, ये प्राचीन बात भी है, प्राचीन तथ्य यही है। जब हनुमान जी गए वहां लंकापुरी में, वहां तन तन करके देख रहे थे कौन है, कहां से संधान मिलेगा, कहां से सुसंधान मिलेगा? ब्रह्मचर्य थे हनुमान जी, बाल ब्रह्मचारी, पर नंगी स्त्रियों को देखते थे। ये रस भाई, किस स्त्री को ढूंढने कोई जाएगा कि पुरुष को महल में ढूंढेगा? रावण के महल में, रावण का जो रन्नीवास था, उस रन्नीवास में हनुमान जी प्रवेश कर गए। देखो कर्म की निष्ठा कितनी प्रबल है। बाल ब्रह्मचारी परम तेजस्वी हनुमान है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, विशाल एस ब्रह्मचारी है, पर स्त्री सीता जी की खोज करने गए, प्रवेश कर गए कहां? रावण की रन्नीवास में, जहां अर्धनग्न स्त्रियां लेटी हुई थी। रात्रि का समय, हनुमान प्रवेश करे, शाम के प्रवेश कर गए, रात्रि को ढूंढने लगे, इस रन्नीवास में ही ढूंढने लगे, और अर्धनग्न स्त्रियां, ये सीता है, ये मेरी माता नहीं, ये मेरी मां नहीं हो सकती, मेरी मां कभी राम के बिना सो नहीं सकती। हनुमान जी ने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं, स्त्रियों का नग्न दृश्य हम कैसे देख सकते हैं? फिर उन्होंने अपने मन को विचार किया, नहीं मुझे श्री राम का कार्य करना है, पर मेरे मन में विकार आता है कि नहीं आता है? हो सकता है वो दो चार स्त्रियों को उठा के ले सकते थे, क्या आपत्ति थी? जिनके पास इतनी ताकत थी कि लंका को उखाड़ करके सागर में डुबाने की, और क्या वो 10-5 स्त्री को उठा नहीं सकते थे? इसीलिए कहा गया हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी संसार में दुर्लभ है, साक्षात भगवान शंकर है, शंकर सुमन उनको कहते हैं, अनासक्ति है, प्रचंड अनासक्ति। तो श्रीधर की अनासक्ति देखिएगा, पहचान है, और वही हनुमान जब जाकर के पहुंचे प्रातः काल भोर, तो राम राम कही जागा विभीषण, विभीषण जाग गए, राम राम कह करके वो आवाज पहुंची कहां तक? हनुमान जी तक। हां ये श्री राम का दास है, इनसे हम मिलेंगे तब हमारा काम बनेगा। तो आवाज सुनकर के भक्त घर है या अभक्त घर है, ये पहचान में आ जाता है। भक्तों को पता चला ये श्रीधर का घर है, चिल्लाता है बहुत जोर जोर से। इसलिए वृंदावन में जितने गृहस्थ रहते हैं उनको सबको चिल्लाना चाहिए अपने घर में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये श्रीधर का है। अर्धपथ भक्तगण गेल मात्र धाया, श्रीधर डाक सुने तथा ही था किया, उनको पता चल गया। तो श्रीधर को बोले कि प्रभु जी आपको बुला रहे हैं, बस फिर तो क्या ही था। सुनिया प्रभुर नाम श्रीधर मूर्छित, आनंदे बिहल हई पड़ी ला भूमित। जैसा सुना कि मुझे महाप्रभु बुला रहे हैं, बस इतना सुनते ही भूमि पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये प्रेमी संत है, ऐसे ऐसे श्रीधरी कथा बहुत कुछ है, बहुत लंबा है। महाप्रभु ने उनको इसी उद्देश्य के लिए ही भेजा था। श्रीधर को महाप्रभु वरदान देने के लिए कहते हैं, श्रीधर तुम मांगो जो तुम चाहते हो तुम मांग लो। प्रभु बोले श्रीधर बाछिया मांग बर, श्रीधर तुम चुन लो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं प्रसन्न हो, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न है, तुम्हारी अनासक्ति, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संतोष, तुम्हारा अपरिग्रह, तुम्हारा भाव, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नाम निष्ठा, मैं प्रसन्न हूं, बर मांगो। तो देखो अनासक्त श्रीधर, उनकी कितनी अनासक्ति है, वो सार्वभौम, वो सार्वभौमत्व तो मांग सकते थे, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न अपुनर्भवम। श्रीधर ने कुछ भी नहीं मांगा, क्या मांगा उन्होंने? श्रीधर बले मांग मांग पुनः पुनः बले विश्वंबर, श्रीधर बले प्रभु देह यही बर। प्रभु ने कहा बर मांगो श्रीधर, बर मांगो, तुम विलंब क्यों करते हो? तो श्रीधर क्या कहते हैं सुनो, जे ब्राह्मण काढ़ी नीले मोरा खोला पात, से ब्राह्मण हौ कमूर जन्मे जन्मे नाथ। बोले जिस ब्राह्मण ने जिस जो 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 ब्राह्मण मुझसे झगड़ा करता है, और जिसने जबरदस्त मुझसे मेरे द्रोण को मेरे पत्ते को छीन करके ले लिया है, वो ब्राह्मण, वो निमाय, मेरा जन्म जन्म का प्रभु बने, श्रीधर बले प्रभु देह एही बर, जे ब्राह्मणे काढ़ी नीले मोर खोला पात, से ब्राह्मणे हौक मोर जन्म जन्मे नाथ, से ब्राह्मण मोर संगे करिल कंदल, मोर प्रभु हौक तार चरण जुगल, ऐसी प्रार्थना है। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, ऐसा भाव है। इसको कहते निष्कामता, इसी का नाम है निष्कामता। महाप्रभु ने आगे कहा, श्रीधर मैंने इसीलिए तुमको भेजा है शिक्षा देने के लिए। तो महाप्रभु ने वरदान दिया, अपने भक्ति का वरदान दे दिया उनको। धन नहीं जन नहीं नहीं का पांडित्य के चिन्ह ये सकल चैतन्य भक्त। प्रभु बोले श्रीधर अमार तुम्हें दास, एतक देखिला तुम्हें अमार प्रकाश, एतक तुमार मति भेद ना हईलो, वेद गोप्य भक्ति जोगे तोरे आमे दिल। श्रीधर मैं तुमको सबको देना चाहता था, पर तुम्हारी अनासक्ति इतनी है तो हमारा धीरज नहीं रहा। वेद योग्य वेद गोप्य जो भक्ति योग है, जो भक्ति को संसार, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी चाहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं, जो भक्ति योग परम गोपनीय है, हे श्रीधर हम प्रसन्न होकर के हम तुम्हें भक्ति प्रदान करते हैं। जन्म जन्म ऐसी भक्ति को महाप्रभु ने प्रदान किया। सब वैष्णव बोले जय जय ध्वनि हईल वैष्णव मंडले, श्रीधर पाइल बर सुनील सकले। सब वैष्णव बोले श्रीधर की जय, सबने के जय जय कहा। और सब वैष्णव ने देखा कि श्रीधर को कैसा दुर्लभ वरदान की प्राप्ति भई। ऐसा वरदान है, ऐसा निष्काम, ऐसा गृहस्थ तो क्या है। गृहस्थाश्रम किम करोति अवध्यम, यदि ऐसी अनासक्ति हो तो गृहस्थ आश्रम क्या बिगाड़ सकता है। पर फिर भी कांटे के जंगल पे जाओगे तो कांटा नहीं चुभेगा कौन कह सकता है। इसलिए साधु सावधान, बहुत विलंब हो गया, आप हमारे अपराध को क्षमा कर देना। श्रीधर की कथा परम अनुपम है, आप लोग चैतन्य भागवत से पाठ कर लेना। तो प्रभुपाद जी का यही उद्देश्य है कि हमारे संस्था में जितने भी गृहस्थ है वो निष्कामी बने और प्रभु का भजन करके इस जन्म मरण के बंधन को काट डाले। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्रीधर परम भक्त श्रीधर की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर परमानंदे हरि हरि। अब सवेरे की कथा श्रीधर की, शाम की कथा सुदाम की, एक ही बात है, बात एक ही है, श्रीधर और सुदामा दोनों एक है।